ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना से भारत में हल्दी उत्पादन के प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में राष्ट्रीय अजैविक ताड़ प्रबंधन संस्थान पुणे के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र कुमार कदम और स्पाइसेस बोर्ड के सदस्य पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह रघुवंशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह।
देश में स्पाइस बोर्ड की तर्ज पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है, जिसका शुभारंभ मकर संक्रांति के दिन सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उसका शुभारंभ किया। और इस गोल्डन स्पाइस नाम से, जिसे स्पाइस गोल्ड हल्दी कहते हैं, इस बोर्ड के गठन को लेकर बहुत लंबे समय से हल्दी किसानों की मांग चल रही थी कई स्टेट्स में, जिसका सरकार ने पूरा कर दिया है। इस पूरे परिदृश्य को देखें तो देश में हल्दी के उत्पादन, हल्दी के किसान और इससे होने वाले लाभ और बोर्ड के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों को इससे क्या क्या लाभ होगा और हल्दी से हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर, किसानों के आमदनी पर क्या असर पड़ेगा, इस पूरे मामले पर, इस पूरे इशू पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं ICR राष्ट्रीय अजैविक तनाव प्रबंधन संस्थान पूना के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर जितेंद्र कुमार कदम और पद्म श्री चंद्रशेखर सिंह रघुवंशी, जो स्पाइस बोर्ड के मेंबर हैं। डॉक्टर कदम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार के इस कदम का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे आप किस तरह देख रहे हैं?
अभी आप हल्दी की खेती के बारे में देखेंगे तो पूरे जो वर्ल्ड में, हमारा भारत देश जो है, यह हल्दी के फसल में बहुत ही आगे बढ़ गया और नंबर एक पे है। जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 70% एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में जो शेयर है भारत का है। तो ऐसा बढ़ावा, जैसे कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया गया है, तो ये भारतीय किसानों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो जाएगा, क्योंकि इससे जो भी अभी हमारे किसानों को दिक्कतें आती है वो पूरी दिक्कतें उससे सॉल्व हो जाएगी।
बोर्ड के आने के बाद किसानों को किस तरह से लाभ है, बोर्ड उन्हें कौन सी फैसिलिटी, कौन सी सुविधाएं मुहैया कराएगा, जिससे लग रहा है कि हल्दी किसानों को बहुत लाभ होगा, वो क्या क्या चीजें मिलेंगी उनको?
अभी हल्दी की खेती के बारे में हम देखेंगे तो किसानों को मुख्य दिक्कतें जो आती है, जो हल्दी की फसल निकालने के बाद, क्योंकि हल्दी की फसल तो वो अच्छी तरह से पकाते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेसिंग है, प्रक्रिया जो है, इसके लिए जो मायने लगते हैं, जो जो विविध घटक जवाबदार है, उसमें उनको दिक्कतें आती है। जैसे कि हल्दी को उबालने के बाद है, हल्दी को पॉलिश करना है और पॉलिश करने के बाद ग्रेडिंग और मार्केटिंग करना है। तो इसमें जो है, उसमें सभी किसान इकट्ठा नहीं होते, इसलिए पूरा ट्रेड जो है ये पूरा व्यापारियों के हाथ में है। एक क्षेत्र के नीचे सभी किसान आ जाएंगे और उसको जो भी फैसिलिटीज है, जैसे कि प्रोसेसिंग वाली फैसिलिटी है।
ये कौन से बड़े राज्य हैं जहां पर हल्दी की खेती ज्यादा होती है, वहां के किसान इसकी खेती के प्रति ज्यादा रुचि रखते हैं?
अभी पूरे भारत में हम देखेंगे तो तकरीबन 3 लाख के ऊपर हेक्टेयर इसका एरिया है और जो टोटल उसके जो प्रोडक्शन है ये 11.69 लाख मेट्रिक टन इसका उत्पादन होता है। फिर भी हम जो उसका पिछला, जब से हल्दी की शुरुआत हमारे भारत देश में हुई है, ये देखेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अभी इसमें से जितने भी राज्य है, तकरीबन 20 से ज्यादा राज्य इसमें शामिल है। इसमें प्रमुख उत्पादक राज्य जो है ये महाराष्ट्र है, उसके बाद जो है तेलंगाना है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, केरला है, और सभी जगह खाली जो पहाड़ी वाला एरिया है, जो हमारा श्रीनगर में जहाँ बर्फ गिरता है, वो छोड़ के अग्नि जम्मू से कन्याकुमारी तक ये हल्दी उगाया जा सकती है और इधर हमारे कच्छ से नॉर्थ ईस्ट तक ये हल्दी जो है, हल्दी की फसल ले जा सकती है।
दुनिया के तमाम देशों में आज की तारीख में हल्दी की मांग बढ़ी है, खास तौर से जब कोरोना का पीरियड चला, जो कोरोना काल के दौरान हल्दी की गुणवत्ता को देखते हुए दुनिया भर से मांग आने लगी और इससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला। तो आप इसे किस तरह देखते हैं, एक्सपोर्ट को जो मौका मिलेगा, किसानों को अपनी उपज को दुनिया के बाजार में बेचने का मौका मिलेगा, तो किसानों को लाभ होगा और किसानों को एकजुट करना और हल्दी की गुणवत्ता को बनाए रखना, उत्पादकता जो आप अभी कह रहे थे कि घट रही है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी बाजार उपलब्ध कराना, चाहे वो घरेलू बाजार हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो, ठीक ऐसे ही इसके लिए गुणवत्ता का बढ़ाना और प्रोडक्टिविटी का बढ़ाना, यानी उत्पादकता को बढ़ाना और गुणवत्ता को, दोनों स्तरों पर वैज्ञानिक हमारे हैं आईसीएआर के जो सेंटर्स हैं वहां किस तरह से काम हो रहा है और किस लेवल पर है?
जैसे कि आपने सही बात कही कि कोरोना के बाद पूरे वर्ल्ड में यह हल्दी के लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए सभी लोग देख रहे हैं। जितने भी अलग-अलग तरीके के काढ़े बने, दवा बनी, उसमें बेस है जो हल्दी का, जो वापर है वह हल्दी का वापर बहुत बड़ा है। तो अभी ये जो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, तकरीबन हल्दी में जो मुख्य घटक है कुर्कुमिन बोल के, तो ये कुर्कुमिन जो है, कुर्कुमिन का औषधि गुणधर्म जो है वो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए माना जाता है। हमारा जो हल्दी के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में हल्दी की फसल जो बोई जाती है, उसमें नॉर्थ ईस्ट की हल्दी है जो एक नंबर की हल्दी मानी जाती है, कि जहाँ का लकाडोंग टर्मरिक बोलते हैं। तो ये
जी
लकाडोंग टर्मरिक में कुर्कुमिन परसेंटेज जो है वो 7 या 8% के ऊपर रहती है। तो ये हल्दी जो हमारे पूरे जो ग्लोबल में या वर्ल्ड में इसको अच्छी हल्दी मानी जाती है। तो इस हिसाब से अलग अलग जिलों का, अलग अलग राज्यों का हल्दी की फसलों के बारे में अलग अलग उनकी गुण वैशिष्ट्य है। जैसे कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे हम भौगोलिक नामांकन करते हैं, तो हल्दी में अब तक पूरे भारत में 6 भौगोलिक मानांकन हो चुके हैं। ये हर एक भौगोलिक मानांकन की हर एक उसकी विशेषता है। जैसे कि महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो 3 हल्दी के बारे में भौगोलिक मानांकन प्राप्त है। एक है जो सांगली टर्मरिक है, दूसरा जो है वायगांव टर्मरिक है, और तीसरा 2-3 महीने पहले वसमत हल्दी का भौगोलिक मानांकन हुआ है, और कंदमल हल्दी जो ओडिशा की है तो उसका भी भौगोलिक मानांकन हो गया है। अभी ये जो अलग अलग किस्मों के अलग अलग जगह से आप देखेंगे तो उनकी वैशिष्ट्य है, और उनके जो अलग अलग वैशिष्ट्य, गुण वैशिष्ट्य है, उससे यह हल्दी जानी जाती है। अभी ये हल्दी को बढ़ावा देने के लिए हमें जो भौगोलिक मानांकन प्राप्त जो यूजर्स है उनको इंक्रीज करना है। तो इनको बढ़ावा देने के लिए हम जो है नए नए किस्में जो है वहां के जो सुधारित सिलेक्शन से, तो वो अच्छे फसल करेंगे तो उसको और भी अच्छा मुनाफा फार्मर्स को मिलेगा।
हमारे संवाददाता हैदराबाद से MS लक्ष्मी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी हल्दी पर।
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के औपचारिक शुभारंभ के साथ तेलंगाना के निजामाबाद के हल्दी किसानों का लंबे समय सपना पूरा हो गया है। मार्च महीने तक चलने वाले हल्दी सीजन की शुरुआत में बोर्ड के घटना से किसान बेहद खुश है। निजामाबाद का केंद्र बनाकर बोर्ड की स्थापना की गई है और पी गंगा रेड्डी इसके पहले अध्यक्ष होंगे। नवगठित बोर्ड में आयुष, औषधि विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और वाणिज्य विभाग जैसे विभिन्न मंत्रालयों के अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र और मेघालय जैसा अधिक हल्दी उत्पादक राज्यों और निर्यातकों और उत्पादकों के निकायों का भी प्रतिनिधित्व होंगे। मकर संक्रांति के शुभ दिन पर हल्दी बोर्ड के शुभारंभ से न केवल निजामाबाद बल्कि तेलंगाना राज्य के जगित्याल, निर्मल, विकाराबाद, वरंगल और महबूबाबाद जैसे जिलों के हल्दी किसानों को भी लाभ मिलने जा रहे हैं। जहां 18,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हल्दी की खेती होती है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय जैसा 10 राज्यों के किसान भी हल्दी के खेतों में काफी योगदान देते हैं। दुनिया के कुल हल्दी उत्पादन में भारत का बड़ा योगदान है, जिसे भारतीय केसर का नाम से भी जाना जाता है। 11 लाख टन से अधिक वार्षिक उत्पादन के साथ भारत 80% से ज्यादा वैश्विक उत्पादन में योगदान देती है। इसके बाद चीन 8%, म्यांमार 4% और नाइजीरिया और बांग्लादेश 3% से 7 अगले स्थानों पर हैं। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कृषि बाजार खुफिया केंद्र के रिपोर्ट के अनुसार देश ने 2022 और 23 सीजन के दौरान 1.5 लाख टन से ज्यादा हल्दी का निर्यात किया है। गोल्डन स्पाइस के रूप में भी जाने जाने वाले ये टर्मरिक यानी हल्दी के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना पर तेलंगाना के हल्दी किसान खुशी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में वैश्विक बाजार में विशेष रूप से यूएसए, यूके और मलेशिया से अच्छी निर्यात मांग देखी जा रही है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी क्षेत्र के समग्र विकास और वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये हल्दी और इसके उत्पादों के व्यापार को बढ़ाने के लिए मौजूदा विशाल क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने का मदद करेगा, खासकर हल्दी के स्वास्थ्य और कल्याण लाभों के मद्देनजर। हैदराबाद से लक्ष्मी।
विजयवाड़ा से हमारे संवाददाता साई वेम्पत्ति अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हल्दी के वहाँ उत्पादन पर, वहाँ की क्या स्थिति है।
आंध्र प्रदेश भारत के प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्यों में से एक है। यहाँ लगभग 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती होती है, जिससे सालाना करीब 75,000 टन हल्दी का उत्पादन होता है। अनंतपुर जिले के अलावा इस राज्य में लगभग सभी जिलों में हल्दी की खेती की जाती है। हल्दी उत्पादन का विशेष केंद्र कृष्णा जोन है, जिसमें कृष्णा, गुंटूर, बापटला, पलनाडु और प्रकाशम जिले शामिल हैं। चक्रवात की वजह से पहले हल्दी के उत्पादन पर असर होता था, लेकिन इस साल हल्दी का मूल्य 15,000 से 19,000 प्रति क्विंटल के बीच रहा, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा हुआ। इस भारी उत्पादन से किसानों में हल्दी की खेती को लेकर रुचि बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में पार्वतीपुरम मान्यम जिले में हल्दी प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इस केंद्र की स्थापना से 2,000 जनजातीय किसानों को मदद मिलेगी, जो हल्दी की एक स्थानीय किस्म का उत्पादन करते हैं। ये जनजातीय किसान हल्दी की जिस खास किस्म का उत्पादन करते हैं, उसमें सामान्य हल्दी के मुकाबले अधिक कर्क्यूमिन होता है। इसके अतिरिक्त राजामुंद्री के सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये भी घोषणा की है कि ये संस्थान हल्दी के लिए फसल कटाई के बाद की तकनीकों और मूल्य संवर्धन प्रक्रियाओं पर काम कर रहा है। इन कदमों के साथ साथ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना से किसानों की आय बढ़ाने और आंध्र प्रदेश में हल्दी की पैदावार को बढ़ावा मिलने की आशा जताई जा रही है। विजयवाड़ा से साई वेम्पति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं डॉक्टर चंद्रशेखर रघुवंशी बनारस से, जो पद्मश्री हैं और स्पाइस बोर्ड के मेंबर भी हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है और इस गठन करने के साथ ही सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि 2030 तक हल्दी एकमात्र मसाला, हल्दी का निर्यात $1 अरब के आंकड़े को भी हम पार कर सकते हैं, और इसका एक लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बोर्ड की क्या भूमिका होगी और इसके लिए किसानों को किस तरह की मदद की उम्मीद है?
40 सालों से जो मांग रही है किसानों की, जो है कि एक हल्दी बोर्ड की स्थापना किया जाए, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की। और सबसे बड़ा जो काम है बोर्ड का इन क्षेत्र में, इसको विकास जो है, विकास के लिए बोर्ड की गठन होता है कि हम इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, चाहे उत्पादन बढ़ाएंगे। मीटिंग होती है बोर्ड की, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है इनका जो है एक पार्क बनेगा जहां पर उसका प्रोसेसिंग होगा। तो इस तरह से जो बोर्ड की रचना करके जो है इस काम को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। हम लोग का लक्ष्य है कि 5 साल बाद हम लोग इस उत्पादन को 2.5 लाख करने की सोच रहे हैं। और भारत आज भी जो है 70% उत्पादक जो है भारत पूरे विश्व में हल्दी का है, और इसको हम लोग इसको दुगुना करने के प्लान में हैं। और अभी तक जो है स्पाइस बोर्ड के ही महत्व काम होता था, लेकिन आज अलग बोर्ड बन जाने से इसमें और तरक्की आएगी और विकास होगा।
डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बोर्ड बना है, बोर्ड के गठन के साथ ही दूसरे मंत्रालयों को भी इस बोर्ड में मेंबर बनाया गया है, जैसे आयुष मंत्रालय है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है और तमाम अन्य जो इससे जुड़े हुए मंत्रालय और विभाग हैं, ताकि इसका जो बोर्ड लोगों तक पहुंच सके, किसानों तक पहुंच सके। आयुष विभाग जो इसके मेडिसिनल वैल्यू है उसका कैसे लाभ उठाया जाए, कैसे न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी कितनी है, और हमारे यहाँ तो भारत में तो इसके सामाजिक मायने भी बहुत होते हैं, इसकी सामाजिक वैल्यू भी है। इन सब चीजों को, इतना कुछ देखते हुए, इस विस्तार को कैसे और बढ़ाया जा सकता है और कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है, हमें लगता है बोर्ड इस दिशा में प्रयास करेगा। डॉक्टर साहब, आप तो उसके मेंबर हैं, आप थोड़ा इसको विस्तार से बताएं प्लीज।
मैं ये कह रहा हूँ, हल्दी का डिमांड तो पूरी दुनिया में है और 70% भाग जो है हल्दी हम भारत में पैदा करते हैं। गवर्नमेंट की एक इच्छा है कि हम 5 साल में इसको जो है दुगुना करने के प्लान में है, कि इसका विषय का आपने कहा कि आयुष मंत्रालय वाले और के लोग, एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग, सारे लोगों को इसलिए जोड़ा गया है कि सारे लोगों अपना अपना एक अनुभव रखेंगे, किसान के यहाँ उत्पादन कैसे बढ़ सकता है, निर्यात कैसे हो सकता है, उसके भी बड़ी जो इसका वो अपना अनुभव साझा करेंगे। इसमें जो साइंटिस्ट लोग हैं जो सरकार के ICR के जो मसाला बोर्ड में है, तो इन लोग सबके अनुभव से ही काम होगा और ज्यादा संभावना है, जबकि हल्दी को पब्लिक कार्यों में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। आयुर्वेद में हरदरा खंड आता है, कई तरह दवाइयों में इसको मिलाते हैं, इसका उपयोग होता है। इसके बारे में और जागरूकता लाने की जरूरत है कि इसको अधिक से अधिक उपयोग करके, इसके जिससे हम जो कि एंटीबायोटिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इसमें कई चीजें होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये सब चीजों को जब लोगों को पता होगा, जैसे कोरोना काल में काफी लोगों को पता चला, पूरी दुनिया में लोगों ने देखा कि हल्दी को दूध में मिला के पीने से हमारी इम्यूनिटी क्षमता बढ़ेगी, तो इस तरह से प्रचार प्रसार होगा। एक नया बोर्ड बन जाने से इसमें और काम जो होगा हमको लग रहा है और अच्छे तरीके से होगा, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।
चर्चा में हिस्सा लेने के लिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार कदम और डॉक्टर चंद्रशेखर, आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना से भारत में हल्दी उत्पादन के प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में राष्ट्रीय अजैविक ताड़ प्रबंधन संस्थान पुणे के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र कुमार कदम और स्पाइसेस बोर्ड के सदस्य पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह रघुवंशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह।